ओम शांति। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं कभी कभी की माया इस विषय पर। डॉक्टर सचिन भाई जी हमें दिशा निर्देश देंगे।
ओम शांति। कल शाम बाबा की जो अव्यक्त वाणी चली 2 फरवरी 2007 की, उसमें अंत में बाबा ने एक ड्रिल कराई। एक सेकंड में जहां मन लगाना चाहो वहां लगा दो, ये पहली। और दूसरी ड्रिल थी, एक सेकंड में एक संकल्प में स्थित हो जाओ, एक बाप दूसरा ना कोई। इस मुरली पर हम शाम को थोड़ी चर्चा करेंगे बीच बीच में। सारी मुरली में तीन और दो बातें हैं। तीन प्राप्तियां, कहीं दो विधियां, कहीं तीन बिंदियां, कहीं खुशी से मिलने वाली तीन बातें, तो कहीं तीन विधियां जमा करने की, कहीं तीन विधियां योग में स्थित होने की। हर जगह पर दो तीन, दो तीन, दो तीन। तो दो ड्रिल बाबा ने कराई। तो अभी हम सभी एक मिनट के लिए अलर्ट होके बैठेंगे, क्योंकि अंत के समय में एक ही चीज काम आएगी, कौन कितना जल्दी शरीर से डिटैच हो जाता है, कितना फास्ट एकाग्र हो जाता है। तो सभी स्थिर, भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान, मैं एक ज्योतिर्मय आत्मा हूं, आत्मा के सातों गुण मैं अंतर मन में स्वीकार करता हूं। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं तेजस्वी आत्मा हूं। संपूर्ण एकाग्र, मुझ आत्मा से शक्तिशाली किरणें निकल, चहुं ओर फैल रही है। संपूर्ण मौन, अव्यक्त स्थिति, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। वायुमंडल अव्यक्त, शक्ति का अनुभव, एक बाप ही संसार, बस एक का हिसाब, एक रस, एक मत, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, सब कुछ एक में, सब कुछ एक से, सब कुछ एक के लिए, सब कुछ एक के साथ, मैं संपूर्ण एकाग्र आत्मा, एक में समाई हूं, मुझ आत्मा से शक्तिशाली किरणें चहुओर परमात्म प्रेम की तरंगे वायुमंडल में ईश्वरीय स्नेह की वर्षा अंतकरण शुद्ध हो रहा है, मैं तेजस्वियों में तेजस्वी, तपस्वियों में महातपस्वी, ऋषियों में राजऋषि, एक दिव्य चेतना, स्वयं स्वयं की शक्तियों का अनुभव, परम धाम से पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ पर, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, richest in the world, अविनाशी खजाने, मेरी संपत्ति है, मन संपूर्ण शांत, एक की याद में स्वस्वरूप में स्थित, वायुमंडल में शक्ति ऊर्जा का अनंत प्रवाह, मैं अत्यंत शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरी अपनी शक्ति के साथ परमात्मा शक्तियां जुड़ी हुई है, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूपा, तेजस्वी आत्मा, ज्ञान की वर्षा, शब्द शब्द धारणा बनती जा रही है। इसी संकल्प के साथ आज स्वयं को इस ज्ञान भट्टी में, इस योग भट्टी में, इस दिव्य गुणों की धारणा की भट्टी में और स्वसेवा की भट्टी में स्वयं को मैं संपूर्ण रीति से स्वाहा करती हूं। सोना कुंदन बनकर निकलेगा, अभी अभी जब हम सेवा केंद्र से इस स्थान पर आ रहे थे तो हमको बताया गया कि यहाँ पर बहुत से आर्मी का विस्तार है और बहुत बड़ा कैंपस पार होते हुए करते हुए हम यहाँ आए। उस आर्मी के कैंपस को देखते हुए हमें एक बात याद आई। विलियम जेम्स ने अपने एक अनुभव में लिखा है, अमेरिका का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक, उसने लिखा है कि जब मैं युवा था और छोटा था, एक बार हम किसी चाय की टपरी पर खड़े थे मित्रों के साथ और देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है आ रहा है और उसके सिर पर बहुत सारा सामान है, लगेज, और हमें खुराफत सूची और हमने जोर से कहा अटेंशन, तो वो व्यक्ति जो कि रिटायर्ड था और 30 साल तक आर्मी में था और अभी सिर पर बहुत सारा सामान लेते हुए लड़खड़ाते हुए आ रहा था, जैसे ही इधर से आवाज सुनता है अटेंशन, अटेंशन हो जाता है और सारा सामान गिर जाता है। वो गुस्से गुस्से में विलियम जेम्स के पास आता है और कहता है कि क्या तुमने अटेंशन कहा? वो लेखक कहता है हाँ, क्या इस देश में अटेंशन कहना पाप है क्या? वो कहता है पाप तो नहीं है, पर मैं 30 साल तक आर्मी में रहा हूं और जैसे ही कोई अटेंशन कहता है मैं अटेंशन हो जाता हूं। वो आदत इतनी पक्की है कि मेरा उस पर वश नहीं है। और वो कहता है यदि मैं मर भी जाऊं और मुझे कब्र में दाखिल कर दिया जाए और कोई अटेंशन कहे तो शायद मैं जिंदा खड़ा हो जाऊं, आदत इतनी पक्की है। हैबिट्स, एडिक्शन और संस्कार, ये तीन शब्द है। हैबिट्स, एडिक्शन, लत और संस्कार, तीनों भी बहुत गहरे हैं। सबसे गहरा कौन सा है तीनों में? संस्कार। वैसे तो तीनों ही गहरे और तीनों ही कॉन्शियस माइंड के लेवल पर नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर है। यदि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कोई भी चीज रोज 1 घंटा करो और 3 मास तक करते रहो तो आदत बन जाएगी। कई लोग हिसाब लगाते हैं 21 दिन, कई लोग 66 डेज, अलग अलग व्याख्या है, पर कहने का भाव, जो हमारी धारणाएं हैं और जो हमारी मर्यादाएं हैं और जो श्रीमत है, उस श्रीमत को ही अपनी आदत बना देना तो वो अपने आप काम करेगी। फिर उसमें वो कभी कभी वाली जो माया है वो नहीं आएगी। बाबा कहते हैं मुझे ये शब्द पसंद नहीं है, एक लिस्ट निकाल सकते हैं हम बाबा को कौन से शब्द पसंद है और कौन से शब्द पसंद नहीं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ गॉड। तो आज के इस सत्र में ऐसी हम 26 बातें देखेंगे, जितनी हो सके अभी बची हुई शाम को, जो कि इस ब्राह्मण जीवन के सेवा केंद्र पर आने वाले भाई बहनों के लिए एब्सोल्यूट मर्यादाएं है, नियम है, और इन में से किसी एक में भी कभी हां कभी ना, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, अगर ऐसा हो रहा है तो स्थिति कभी भी शक्तिशाली नहीं बनेगी। और इस यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी स्थिति आगे है, और इस यज्ञ में सबसे आगे वो है जिसकी प्यूरिटी पवित्रता आगे है। कल की अव्यक्तवाणी बाबा ने कहा, तुम होलीएस्ट इन द वर्ल्ड हो। होलीएस्ट अर्थात तुम्हारे सारे स्वरूप होली, तीनों ही परम धाम में होली। जब इस धरती पर आए थे सतयुग में तब होली, और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा भी इंप्यूरिटी टच ना हो। और इस ब्राह्मण जीवन में भी सुबह की साकार मुरली, वो लोग कहते हैं नहीं होगा, वो लोग क्या कहते हैं नहीं होगा, तुम कहते हो वाह क्यों नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, होगा, हम करके दिखाएंगे। इसलिए तुम ब्राह्मण बच्चे प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम विकार में नहीं जाएंगे। तुम्हारा है महामंत्र, तुम्हारा है जीवन मुक्ति का मंत्र, उनका है वशीकरण मंत्र। तुम गुरु हो, सद्गुरु की संतान तुम गुरु हो। तो इन धारणाओं को, इन श्रीमत को ही अपने जीवन की आदत, निज संस्कार बना लेना। कुछ दिन पहले स्लोगन था, अटेंशन और प्रैक्टिस, इसको क्या कर दो, निज संस्कार बना दो। निजी संस्कार बनो दो तो विजयी बनेंगे। परसों उसमें फिर कभी कभी नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो आज अभी इसी वक्त। कल बाबा ने इशारा दिया समय का, टाइम, उसको आज ही मिटाना है। और मिटाने के लिए संकल्प की आवश्यकता है, शक्तिशाली संकल्प, पावरफुल संकल्प, ऐसा संकल्प कि संसार एक तरफ और हम एक तरफ पर डिगे ना अपनी धारणाओं से। चाहे संसार कुछ भी कहता रहे, हम आगे बढ़ते रहे। जैसे दिखाया है, एक सन्यासी है, किसी गांव में आता है, थका हारा है बेचारा, और लेट जाता है किसी एक कुएं के पास, पनघट के पास, थका है, बहुत पैदल यात्रा की है, एक पत्थर लेता है सिराने और सो जाता है। थोड़ी देर में गांव की महिला आती है वहां पे, पन्हारिन, उस पनघट पर पानी भरने। एक महिला कहती है, संन्यास ले लिया, संसार छोड़ दिया, पर तकिए का मोह अभी तक गया नहीं। सन्यासी जिसे अभी अभी नींद लगी थी, उसकी आंख खुलती है, सुनता है कि किसी ने मेरे विषय में ऐसा कहा, वो उठ के खड़ा होता है और उस पत्थर को बाहर फेंक देता है। दूसरी स्त्री आती है, वो कहती है, संन्यास ले लिया पर अकड़ नहीं गई अभी तक। वो चुप खड़ा हो जाता है। तीसरी स्त्री आती है पानी भरने, वो कहती है, हम पनिहारिन, हम तो महिलाएं, यहां आएगी और जाएगी, तुम क्यों ध्यान देते हो हमारी बातों की तरफ। वो चुप खड़ा रहता है। फिर चौथी एक पनिहारिन आती है पानी भरने, जो कि वही है, और वो कहती है, चाहे हम कुछ कहे या न कहे, तुम केवल राम के गुण गाते जाओ, तुम हमारी बातों की तरफ क्यों ध्यान देते हो। संसार हम कुछ भी करें, कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। जो ज्ञान चल रहे हैं लोग उनका विरोध करते, जब वो ज्ञान छोड़ देते हैं फिर भी कहते हैं छोड़ दिया ना, कुछ ना कुछ तो कहना ही है। हम किसी के मुख पर पट्टी नहीं बांध सकते, इसके लिए संसार जो कहे कहने दो। भगवान ने क्या कहा है, केवल उसी तरफ ध्यान। कल की मुरली थी, इस दुख के समय में तुमको लॉटरी मिली है। कल की मुरली थी, तुम्हें खुशी कितनी होनी चाहिए, नाखून से चोटी तक, जमीन से आसमान तक, ऐसी ऊंची खुशी। संसार जो कहे कहने दो। तो ऐसी 26 बातों में पहली बात, ये 26 बातें 26 मर्यादाएं हैं, ए से लेकर जेड तक। ए अमृत वेला, परमात्मा महावाक्य है अमृत वेला। स्वयं को इतना ईश्वरीय प्रेम से भर दो, इतना भर दो कि सारे दिन भर फिर किसी देहधारी का प्यार ना खींचे, नहीं तो देहधारियों का प्यार खींचते रहेगा, नहीं तो उनकी तरफ बुद्धि जाती रहेगी। ईश्वरीय प्यार, क्योंकि आत्मा की प्यास प्यार की है, आत्मा भूखी है प्रेम के लिए। यदि उसे ईश्वरीय प्रेम न दिया जाए तो वह देहधारियों के प्रेम की तरफ जाएगी। देहधारियों का प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए, सिंपति चाहिए, प्रेस चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, हमने ये सेवा की हमारी तारीफ करो, अगर नहीं की तो हमें दुख। अपेक्षाएं, ब्राह्मण लाइफ इज अ लाइफ ऑफ नो एक्सपेक्टेशन, जीरो एक्सपेक्टेशंस। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम जो कर रहे हैं अपने आप हमारे अकाउंट में जमा हो रहा है। संसार के देहधारियों की तारीफ, स्तुति, प्रशंसा, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए। तो सबसे पहली नियम, सबसे पहला धारणा इस यज्ञ का है अमृत वेला। अभी हम आप सबसे हाथ खड़ा करवाएंगे। पिछले एक मास में सब लोग आगे देखेंगे, आजू बाजू नहीं देखना, आजू बाजू नहीं देखना है। ऐसे कितने हैं जिन्होंने एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया? सभी इधर उधर नहीं देखेंगे हम बहुत सारे हैं जिन्होंने नहीं किया है, और बहुत सारे वो भी है जिन्होंने किया है। अगर यही धारणा मजबूत नहीं तो दिनचर्या कैसे मजबूत होगी? बाबा की महावाक्य है, सुबह सुबह अपने आप को पटरी पर डाल दो, फिर सारे दिन भर ये पूछना नहीं पड़ेगा आप क्या करूं वो क्या करूं। सारे उत्तर अमृत वेला मिलेंगे, सभी प्रश्नों की चाबी है अमृत वेला। जगदीश भाई जी ने एक जगह अनुभव लिखा है, कृष्णा अय्यर भारत के जस्टिस, चीफ जस्टिस थे, 80 से भी ज्यादा किताबें लिखी है लॉ पर, अभी अभी शरीर छोड़ा है 100 वर्ष की उम्र में 2014 में। वो मधुबन आते थे, उनको बड़ा प्रेम था ब्रह्मा कुमारी से, 80s में इंद्रप्रस्थ में रुकते थे। उनकी आदत थी सुबह 2 बजे उठने की, अगर कोई कल्चरल प्रोग्राम होता था तो बीच से उठ के चले जाते थे, अगर कल्चरल प्रोग्राम को कहते थे मुझे माफ कर दो मैं नहीं आ सकता। वो व्यक्ति जो संसार के काम करने के लिए, संसार की किताबें लिखने के लिए सुबह अमृत वेला 2 बजे उठकर, उसका नियम है 9 बजे सो जाता था। हम संसार की वो आत्माएं, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट। बाबा ने कहा परम धाम में भी तुम बाप के साथ हो और यहां पर भी हाईएस्ट हो, तुम्हारी पूजा जैसी होती है वैसी और किसी की पूजा नहीं होती है, जिस विधि पूर्वक तुम हाईएस्ट हो। और हमारा भगवान से मिलने का जो समय है वो यदि नींद में जा रहा है तो क्या कहेंगे उसे? यदि उठ रहे परंतु साधारण हो रहा है, यदि उठ रहे हैं परंतु नींद में है तो क्या कहेंगे उसे? बाबा के महावाक्य है, यदि अमृत वेला नींद आती है तो क्या करो? आंखों में क्या डाल दो? क्या डाल दो? तेल डाल दो, रात में बाजू में रख देना। क्यों आती है नींद? संशोधन करना है। क्यों आती है नींद? क्यों नींद पूरी नहीं हो रही है? अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। रात के जो सोने की विधि है उसमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारा रात का समय टीवी, इंटरनेट, मोबाइल और इसमें सब जा रहा है तो कैसे उठ पाएंगे? परमात्मा प्रेम वो अलार्म है जो तुम्हें उठाएगा सुबह सुबह, स्लोगन था कभी। तो आज के बाद केवल इस एक धारणा को मजबूत करना है सबसे ज्यादा। अमृत वेला पर किताब है एक छोटी सी, किस किसने पढ़ी है? जिन्होंने नहीं पढ़ी है सबसे पहले अगले एक मास के लिए वो किताब दिन में 2 बार पढ़ना है, एक पैराग्राफ सुबह एक पैराग्राफ शाम को। पहले उसके महत्व को जानो, पहले उसकी विधि को जानो, क्यों नींद आती है, क्या कारण है उसको ढूंढो। और नींद की समस्या सार्वजनिक है, सब तरफ एक बार माताओं की भट्टी थी, बहुत सारी माताएं आई थी पांडवों ने। रतन मुनि दादी जी योग करा रहे थे, देखा सब माताएं सो रही है। बीच में लाइट, व्हाइट लाइट ऑन किया, सबको खड़े किया, फिर बिठाया। नींद, हे नींद को जीतने वाले, हे गुड़ाकेश, कौन सा समय है, कौन मिलने आया है? अभी अभी मुरली चली थी लास्ट संडे, एक का हिसाब, आंख खुलते ही एक बाप सामने। ये अभ्यास करना है, आंख खुली और बाबा सामने खड़ा है। आंख खुली और जैसे आकाश से एक हाथ आया दृश्य, और मेरे सिर पर उसने रख दिया। आकाश से आवाज आ रही है, जागो। संसार की आत्माएं दुखी है, तड़प रही है, कितने महान कर्तव्य हमें करने और हम क्या कर रहे हैं। यदि ब्राह्मण ही सोए हैं तो संसार का क्या होगा। इसके लिए इस नियम को सबसे पहले ठीक करना है। उठ तो रहे परंतु साधारण तो नहीं हो रहा है, उठ तो रहे परंतु शक्तिशाली क्यों नहीं हो रहा, व्यर्थ तो नहीं चल रहा, निगेटिव तो नहीं चल रहा है। एक रस, वो परम धाम की बीज रूप स्थिति, ज्वालामुखी स्थिति, वो स्थिति का क्यों नहीं अनुभव हो रहा है, क्यों अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल रहा है। स्वयं से प्रश्न पूछने, स्टॉप, सोचो क्यों। इससे उससे प्रश्न पूछते रहना, कोई उत्तर कहीं से नहीं मिलने वाला। हमारे जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी के भी पास नहीं है, सारे उत्तर यहां है अंदर। तो सबसे पहली ये, यदि कभी कभी है, कभी शक्तिशाली कभी साधारण, कभी देर से कभी टाइम, अर्थात टाइम, एक ही टाइम फिक्स कर दो फिर उसको, और उसी को फिक्स लंबा समय। साढ़े तीन तो साढ़े तीन, सवा तीन तो सवा तीन, तीन तो तीन। तीव्र पुरुषार्थी आत्मा की परिभाषा, एक है पुरुषार्थी एक है तीव्र पुरुषार्थी। पुरुषार्थी अर्थात कम से कम 2 घंटा बैठा हुआ योग, बैठा हुआ। तीव्र अर्थात 4, बहुत बड़ी तपस्या है 4 घंटा बैठा योग। दिनचर्या में तो कर ही रहे, वो अलग, पर बहुत सारा फेरबदल करना पड़ेगा। बहुत सारा टाइम जो टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, बातें, गॉसिप, झगमोई झरमोई में जा रहा है, स्टॉप करना पड़ेगा। स्वयं के साथ कमिट करना पड़ेगा कि मुझे अपनी योग की स्थिति शक्तिशाली बनानी है। तो सबसे पहला नियम इसको रिवाइज करना है। जिन्होंने 1 महीने में मिस किया, क्यों मिस किया, स्टडी करनी है, कौन से कारण, कौन से ट्रिगर थे। और अभी नया संकल्प करना है, कल से 3 दिन का संकल्प करना, 3 दिन पूरा हुआ तो 7 दिन, फिर 21 दिन, एक दिन भी मिस ना हो। अगर नींद आती है तो चलते फिरते करो, अगर नींद आती है तो क्लास सुनो, पर सोना नहीं है, कारण ढूंढना है नींद आने के। एक भाई शांति स्तंभ के पास, इतनी भयंकर नींद, पूरा नीचे झुक गया नीचे तक। उसको कहा नींद, वो कहता है सकाश दे रहा हूं धरती को, धरती को सकाश, झुक झुक के, कोई इधर गिरता है कोई उधर गिरता है। कैसा दृश्य है अमृत वेला का, ब्राह्मणों का, भयंकर। 2 प्रकार 3 प्रकार के नींद है, एक तो अमृत वेला नींद, दूसरा मुरली में नींद, तीसरा क्लास में नींद, चौथे वो भी है जो डिस्कशन चालू है एक्टिव, उसमें भी नींद। मनोनिद्रा दादी ने मुरली के समय एक बार मेडिटेशन हॉल में मुरली चल रही थी, सामने माताएं थी, सब सो रही थी, दादी ने सबको उठाया, चलो उठो, पीछे जो दीवार है वहां जाके खड़े हो जाओ, दीवार मेडिटेशन हॉल की। पर माता ऐसी भयंकर महारथी थी कि खड़े खड़े सोना चालू कर दिया वहां पर। कहीं वो मैं तो नहीं, कल की मुरली में था 5 प्रकार। एक तो वो है जो महान सौभाग्यशाली है, दूसरे वो है जो दुर्भाग्यशाली है, तीसरे है पद्मापदम भाग्यशाली, एक है महान दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली और महान दुर्भाग्यशाली। मैं कौन हूं उसमें? भगवान आया है, बैठा है और हम सो रहे हैं। इस धारणा को मजबूत करना है, पहली। दूसरा, इसमें कभी कभी नहीं, एक दिन भी मिस नहीं। ब्रह्मा बाबा 33 इयर्स की तपस्या में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया। एक बार तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने कहा था रेस्ट करो। मनमोहिनी दीदी ने बहुत समझाया बाबा को, बाबा आपको रेस्ट करनी चाहिए, आप अमृत वेला नहीं आओ। पहले तो नहीं माने, बाद में बाबा ने कहा ठीक है देखता हूं। और दूसरे दिन वो कुछ ऊपर उड़ के चुपचाप आके पीछे बैठ गए अमृत वेला। कैसी लगन और कैसी धारणा और कैसी इच्छा शक्ति होगी प्रबल कि वो समय हमें मिस नहीं करना है। प्रातः स्मराम हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम। तुरिया अवस्था, द फोर्थ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, स्वप्न जागृत सुषुप्ति, चौथी अवस्था बताते हैं तुरिया, जिसका कोई नाम नहीं है, द फोर्थ अतिंद्रिय सुख की अवस्था है वो। परमहंस गतिम तुरियम, पहला। दूसरा बी, ब्रह्मचर्य। सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं के लिए, सभी नए पुराने छोटे बड़े सबके लिए, इस यज्ञ का फाउंडेशन प्यूरिटी है। यदि इस बेसिक धारणा में ही गड़बड़ है, यदि इस बेसिक धारणा में ही आज की सुबह की मुरली जो विकारी है, देहभान में फंसे हुए हैं, उनको धारणा नहीं हो सकती। कितनी भी मुरलियां सुन लो और कितना भी सारा दिन भर सेवा कर लो, परंतु यदि मन में वासनाएं हैं तो जीरो। अखंड ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचर्य, कंप्लीट प्यूरिटी। वो कौन से कारण है, वो कौन से ट्रिगर है, उनको ढूंढना और उन्हें नष्ट कर देना, ये कहना बाबा ने मना किया है। इस यज्ञ में शुरुआत से लेकर अब तक जितनी भी आत्माएं इस यज्ञ से बाहर गई है, ऊपर से कुछ भी कारण हो, अंदर से केवल एक ही कारण था, काम। इसलिए अपनी पवित्रता को रिवाइज करना है। इसमें यदि कोई ऐसा, हमें फोन आते हैं, कोई कोई कुमार कहते हैं हां कभी 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 हो जाता है। 15 दिसंबर 2003 अव्यक्तवाणी, वो चित्र देखा है बाबा का, धर्मराज का, बहुत सारे सेंटरों पर लगा हुआ है। इसको साधारण बात नहीं समझना, ये जैसे सफेद कागज पर काला दाग है। ब्रह्मा ने जो सहन किया क्यों सहन किया, दादियों ने जो सहन किया क्यों सहन किया, इस एक धारणा के लिए। एक माता अपने पवित्रता के लिए सालों साल संघर्ष करती है और उसके बाद किसी एक व्यक्ति से प्रेम हो जाता है और फिर से वही वासना यहां प्रकट होती है। ऐसे ढेर सारे उदाहरण है, एक नहीं। दुश्मन को कमजोर नहीं समझना। कल की मुरली, कर्नाटक वालों से मुलाकात, बाबा ने हाथ खड़ा कराया, सेवा में माया किस किस को आती है, हाथ खड़ा करो। माया जिसके जीवन में अब भी है वो हाथ खड़ा करो, विकार का अंश मात्र ना हो। कैसी धारणाएं चाहिए, कैसी तपस्या चाहिए, कितनी अशारीरिक अवस्था चाहिए तो ही होगा, नहीं तो ये देह खींचेगा, ये देह आकर्षित करेगा। देह में है क्या किचड़ा, संसार के जितना किचड़ा है उससे अधिक किचड़ा इस देह में है। तो कंप्लीट प्यूरिटी, उसका एक भाग तो काम विकार पर विजय है, परंतु कल की मुरली में बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं। इसमें कभी कभी अगर हो रहा है, सोचो भगवान खड़ा है और दो लाइन लग जाए, बाबा कहे जिनकी अखंड पवित्रता है वो इधर और जिनकी बार बार खंडित होती है इधर, हम किस लाइन में खड़े होंगे? जिनके मन में अपवित्र संकल्प है, बदबू आती है उनसे भगवान को। हमारी जो अब वो इतनी तारीफ कर रहा है, अगर वो ये कह दे कि तुमसे मुझे बदबू आती है तो अच्छा लगेगा हमें? फिर से अपनी प्यूरिटी को रिवाइज करना है, इसमें कभी कभी नहीं चलेगा। तीसरा सी, सेंटर एटमॉस्फियर। सेंटर का वायुमंडल की जिम्मेवारी हमारी है। यदि मेरे कारण सेंटर के वायुमंडल में कमी हो रही है, अलौकिकता कम हो रही है, व्यर्थ फैल रहा है, निगेटिव फैल रहा है, तो बहुत बड़ा पाप है। सेवा केंद्र की दीवारें पवित्रता की दीवारें हैं। अपनी विकारी दृष्टि से उन पवित्र दीवारों को कलंकित नहीं करना है। कल की अव्यक्त वाणी, वो लोग साइंस की शक्ति है, सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी करते हैं, तुम्हारे पास है साइलेंस की शक्ति जो अध्यात्म की स्मृति, अध्यात्म का वायुमंडल, अलौकिकता वायुमंडल फैलाता है। तो तीसरी बात है कि जो जो भी हम सेवा केंद्र पर जाए, लक्ष्य रखना है हमें यहां का वायुमंडल पावरफुल बनाना है। लक्ष्य रखना है कि मुझे अपनी वृत्ति दृष्टि सब कुछ बहुत ऊंचा रखना है। जो बाबा मुरली सुना रहा है उस मुरली को कंप्लीट धारण करना है, और जो व्यक्ति मुरली सुना रहा है उसके सांस पर, उसकी आवाज पर नहीं जाना है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, नाराज हो जाते हैं और आते नहीं है। कई बार इसका वर्णन मुरली में आता है। मुरली में वाक्य आते हैं, बाबा ये बहन बहुत मीठी है, बहुत अच्छी मुरली सुनाती है। बाप कहते हैं, बच्चे बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है। ये समझना भगवान ने निमित्त बनाया है। उस आवाज में भी नहीं फंस जाना, नहीं तो फिर आवाज जब बदली होगी तो दुख होगा, जब व्यक्ति बदलेगा तो दुख होगा। तो वहां का वायुमंडल शक्तिशाली। और एक भाइयों के लिए, यदि कोई भाई है, यदि कोई व्यक्ति है, वो मंदिर जाता है, ठीक है, और वहां की जो देवी है उसके प्रति उसके मन में विकार के संकल्प आते हैं या फिर व्यर्थ संकल्प आते हैं, और वहां के लोगों को, पुजारियों को वो पता चल जाए तो उसके साथ क्या करेंगे? क्या हश्र करेंगे उसका? इसके लिए चाहे भाई हो चाहे माताएं हो, सेवा केंद्र पर जिनको भगवान ने निमित्त बनाया है, वो वही है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। इसलिए वहां के वायुमंडल। एक भाई ने हमें फोन किया था, वो कह रहा था कि हम क्या करें, जैसे ही मुरली पूरी हो जाती है हमारे सेंटर पे चार पांच भाई लोग हैं, बैठते हैं और पॉलिटिक्स की चर्चा चालू कर देते हैं। कैसे रोके अब उन्हें? कौन से वाइब्रेशंस, कौन सा वायुमंडल तैयार हो रहा है वहां पर इस तरह की चर्चा से? बिजनेस की चर्चा चालू कर देते हैं। हम ये भूल रहे हैं कि आश्रम है, आश्रम में अलौकिक चर्चा होनी चाहिए, ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, व्यर्थ की चर्चा नहीं होनी चाहिए, परदर्शन नहीं होना चाहिए। आश्रम को आश्रम जैसा बनाना है। वायुमंडल इतना शक्तिशाली हो जाए कि कोई भी नई आत्मा आ जाए तो खिंच कर आ जाए, उसको कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं। तीर लग जाए मौन का, अध्यात्म का, अशरीरीपन का, पवित्रता का, अलौकिकता, रॉयल्टी का। तो तीसरा है सेवा केंद्र का वायुमंडल। इसमें यदि कोई ये कहे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी हम वहां जाके व्यर्थ की चर्चा करते हैं, बाबा ने तो एक मुरली में 1995 31 दिसंबर, यदि रात को सोने जाते हो तो सेवा समाचार की लेन देन करते करते नहीं सोओ, कमरे के बाहर जाओ, सेवा समाचार सुनाओ और फिर अंदर जाके सो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। उसके बाद में चौथा डी, ड्रेस। ड्रेस कोड। जो मिलिट्री वाले होते हैं उनको कभी शर्म आती है क्या ड्रेस पहनने में? ब्राह्मणों का भी ड्रेस है और ब्राह्मणों का भी बैच है। हम चाहे न चाहे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। यह सुरक्षा है हमारे लिए श्वेत। वो दूसरी बात है कि वस्त्र बदल कर जाओ और सेवा करो, वो नहीं कह रहे हम। कोई लोग बैच भी लगाते तो इतना छोटा कि दिखता भी नहीं है। यहां पे अगर पूछो बैच तो कहते ये, जो कि दिखता भी नहीं है और कईयों को शर्म भी आती है। ये वस्त्र सेवा का साधन है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बहनों के लिए कहा है कभी श्वेत साड़ी पहनी हुई हो, हाथ में मुरली हो, बाल खुले, तुम हो राज ऋषि। इस्लाम धर्म में बहनों के लिए कही गई बात है वो, भाइयों के लिए भी उसी तरह का हो सकता है। पांच प्रकार के वस्त्र नहीं होने चाहिए। सबसे पहला वस्त्र में बहनों के लिए जो कहा है, हाथ और पैर और मुंह बस इतना ही खुला हो। दूसरा ट्रांसपेरेंट ना हो, पारदर्शी। तीसरा भड़काऊ ना हो, ये सबके लिए है। हमारी तरफ कोई आकर्षित ना हो जाए हमारी देह की तरफ। चौथा भाइयों की जैसा ना हो बहनों के लिए। और पांचवा काफिरों जैसा ना हो, जो कि भक्त नहीं है, अनबिलीवर है। ये इस्लाम धर्म में ये पांच चीजें लिखी है। पर बाबा ने हमें जो ड्रेस दिया है वो तो इससे भी कई गुना अच्छा है, जिसे देखकर ही दिव्यता का अनुभव हो, पवित्रता का अनुभव हो। कोई देखे तो उसको लगे कि ये कौन है, इतनी प्यूरिटी। तो हमारी तरफ हमारे वस्त्रों की वजह से कोई आकर्षित ना हो, ये पहली बात। दूसरी, जब सेवा केंद्र पर जाते हैं या किसी भी भट्टी में जाते हैं, जब मधुबन में जाते हैं, तो हमारा फुल ड्रेस पहना हो। और ये हमारे लिए सुरक्षा है। ये हमको ये बताता है कि हम वो नहीं है। 100 लोगों के बीच में एक ब्रह्मा कुमार, एक ब्रह्मा कुमारी खड़ी है, उसको पता रहता है ये अलग मैं अलग। हमको स्मृति आएगी इससे कि हम वो सब नहीं कर सकते जो संसार के लोग कर रहे, अभी यहां घूम रहे, अभी इधर जा रहे, अभी वहां जा रहे, ये सब हम नहीं कर सकते। हमारी प्यूरिटी और हमारी धारणाएं बहुत बहुत ऊंची है। उसके बाद में अगला ई, एक्सचेंज ऑफ मनी। ये जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, ये यज्ञ की वो मर्यादाएं हैं जो बहुत सारे विदेश के भाई बहनों ने लिखी है, और भारत के जो मर्यादा है उन सबको मिलाकर बता रहे। एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ बिजनेस, जो वातावरण की पॉइंट थी उसी का एक्सटेंशन ये पॉइंट है। एक्सटेंड यहां पर मनी माइंडेडनेस, ग्रीड, लोभ, ये नहीं होना चाहिए उससे। और उसकी चर्चा यदि सेवा केंद्र पर करते बैठ रहे हैं कोई अपने लौकिक बिजनेस की, या एक्सचेंज करते बैठ रहा है, या बिजनेस चालू करने का सोच रहा है और उसमें ब्राह्मणों को इन्वॉल्व कर रहा है, वो मर्यादा नहीं है। और इसमें भी कभी कभी कोई कई करता है, वो कभी कभी नहीं होना चाहिए। अगली धारणा है, फिर इसको हम पूरा करेंगे, एफ, एफ अर्थात फूड। आप में से कितनी माताएं हैं जो रोज भोग लगाती है, और जो नहीं खड़ा कर रही है वो? ये एक ऐसी धारणा है कि जो भगवान को भोग नहीं लगाता, 24 घंटे में एक बार तो सभी को भोग लगाना है जो भी भोजन बनाते हैं। और भाई कैसे कितने हैं जो भोग लगाते? बहुत सारे हैं, चाहे खुद बना रहे हैं या नहीं बना रहे भोग। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। इस धारणा को मजबूत करना है, किस भाव से भोजन खा रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है, भोग लगाया जा रहा है कि नहीं, उसमें शुद्धि कितनी है, राजसिक तामसिक सात्विक कैसा है वो, भोजन की सारी बातें इसके विषय में चर्चा शाम को और फिर करेंगे। पर एक बात आपको लास्ट बता रहे हैं कि हरेक को ये जो भोग वाली बात कही, ये हमारा प्रेम है, भगवान प्रेम का प्यासा और भावना का भूखा है, उसको ये दो ही चीजें चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। अनन्य, और भोजन करने का समय और पकाने का समय योग का समय बना देना है, वो भी योग जैसा हो जाए, प्रार्थना जैसा हो जाए, तपस्या जैसा हो जाए, मौन में हो, आवाज ना हो वहां पर बहुत, वस्तु वस्तु जो डाल रहे उसको दृष्टि देते हुए अनन्य प्रेम से भोजन बनाना, उसको स्वीकार करना और अनन्य प्रेम से उसे स्वीकार करना। एक मुरली में बाबा ने कहा था, अव्यक्त संदेश है बाबा दादा का, कि यदि तुम याद में भोजन बनाओगे और याद में भोजन खाओगे तो 50% प्यूरिटी वैसी आ जाएगी, केवल इतना करने से, बाकी सब अभी किया ही नहीं, केवल भोजन से 50% प्यूरिटी आ जाएगी। तो भोजन एक तपस्या का कृत्य बना देना है। कुछ बातें और हैं, और इसमें कभी कभी नहीं होना चाहिए, आज बनाया कल नहीं बनाया। कभी कई लोग भोजन बनाते बनाते खाने की आदत होती है, कोई कोई ऐसा बनाते हैं कि उसमें डूब जाते हैं, जैसे पता नहीं मिलेगा कि नहीं बाद में, इसकी ये तो बहुत बड़ा विषय है, शाम को और चर्चा करेंगे। ओम शांति।